नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगी। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में महिला सदस्यों को मिलेगी प्राथमिकता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां आज मोतिहारी में 2 दिवसीय शौर्य वेदनम उत्सव की शुरुआत करेंगे। और सुधा अब विदेशों में भी अपने उत्पादों का करेगा निर्यात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कल विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 2,292 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत खर्च किए जाएंगे। चालू सत्र में ही अनुपूरक बजट को खर्च करने की सहमति भी प्राप्त कर ली जाएगी। वहीं 4,974 करोड़ रुपए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और ANM GNM स्कूल के निर्माण पर व्यय होंगे। अनुपूरक बजट में 551 करोड़ रुपए बिजली, 416 करोड़ रुपए पुलिस भवनों के निर्माण, 370 करोड़ सड़क और पुलों के निर्माण और 223 करोड़ कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही 212 करोड़ रुपए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। समारोह में 3 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें STEM, व्यापार, खेल, मीडिया और शासन से जुड़ी प्रतिष्ठित महिलाएं शामिल होंगी। इस वर्ष महिला दिवस का थीम है तेजी से कार्रवाई करें। इधर ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 महिला प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सम्मानित करेगा। वहीं महिला दिवस के एक दिन पूर्व आज विधानसभा में सबसे पहले महिला विधायकों से सवाल लिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कल ही सदन की कार्यवाही के दौरान यह घोषणा की। अध्यक्ष ने बताया है कि भोजनावकाश के बाद सदन का संचालन महिला सदस्य करेंगी। गौरतलब है कि कल शनिवार के चलते विधानमंडल की कार्यवाही नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने और पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर OSC की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगी। इन केंद्रों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय, कानूनी और परामर्श सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त इन केंद्रों में जरूरतमंद महिलाओं के लिए 5 दिन तक ठहरने की सुविधा दी जाती है। इसे विशेष परिस्थितियों में 10 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वन स्टॉप सेंटर पर महिलाएं बिना किसी भय के अपनी समस्याएं साझा कर उचित समाधान प्राप्त कर सकती हैं। वर्तमान में राज्य में 39 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। इसके माध्यम से अब तक 4,000 से अधिक महिलाओं की समस्याओं का समाधान हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने देश में सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में शिक्षण संस्थानों में सहकारी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सफल सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके अलावा मृदा परीक्षण मॉडल विकसित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए UPI को रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ने के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया और सहकारी क्षेत्र में कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के विस्तार के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे AgriStack के उपयोग की सिफारिश की। श्री मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और प्रबंधन संस्थानों में सहकारी पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सफल सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड कम्फेड अब विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से संयुक्त राज्य अमेरिका को घी और मखाना का निर्यात किया जाएगा, वहीं कनाडा में गुलाब जामुन की बिक्री की जाएगी। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी भी उपस्थित रहेंगी। आज जन औषधि दिवस है। इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50-80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है, जिसमें एक पैड की कीमत मात्र ₹1 है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है, जिससे स्थायी और नियमित आय प्रदान होती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने मधुमेह, बीपी, बुखार और दर्द निवारक समेत 53 प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कीमत तय कर दी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की दवाइयों के लिए मूल्य नियंत्रण इकाई राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने इन दवाओं की कीमत तय की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आज पटना में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर के गांधी मैदान में आज से शौर्य वेदनम उत्सव की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने कहा कि शौर्य वेदनम उत्सव का उद्देश्य नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानना और युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करना है।
किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही है। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनके सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है। दूसरा है कि सेना से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है और जितने भी हमारे अग्निवीर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ स्टॉल लगाएंगे NCC के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे। और तीसरी बात है कि सेना की जो कौशलता है वो लड़ाई के में ही नहीं है, लड़ाई के बाहर भी है।
मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने बताया कि किसी भी सीमावर्ती जिले में सेना पहली बार इस तरह का आयोजन कर रही है।
मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जो कि 10 बजे सुबह इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आधुनिक इक्विपमेंट देश में बना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा।
पूर्व मध्य रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। नई दिल्ली से पटना के बीच कल से एक वंदे भारत विशेष ट्रेन चलेगी। इसके अतिरिक्त 15 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें दिल्ली से भागलपुर, गया और राजगीर समेत अन्य स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में कल से तेज हवा चलने और बादल छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 8 और 9 मार्च को राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
8 मार्च को राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एवं जमुई जिलों के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से आज बिजली बिल सुधार के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से उपभोक्ता बिल में संशोधन और गलत रीडिंग में सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। राजधानी पटना के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में जहरीली खिचड़ी खाने से 3 संवासिनियों की मौत के मामले में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक प्रभाकर कुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी अब ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है देश के मतदाता जल्द ही अनूठी पहचान से होंगे लैस। दैनिक भास्कर लिखता है चुकंदर, गेंदा और पालक से गुलाल बना रहा पूसा विश्वविद्यालय, 25 देशों में हो रही है सप्लाई। प्रभात खबर की सुर्खी है इसी महीने पटना के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज तक दौड़ेंगी गाड़ियां। आज अखबार ने बड़ी पटन देवी के गर्भगृह की चारों तरफ की जमीन धंसी को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगी। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में महिला सदस्यों को मिलेगी प्राथमिकता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मोतिहारी में 2 दिवसीय शौर्य वेदनम उत्सव की शुरुआत करेंगे। और सुधा अब विदेशों में भी अपने उत्पादों का करेगा निर्यात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।